पद संख्या 33। सुगंधता अनेक भांति चीर चरु मंडियां, सुखे हरि कटी प्रमाण बीच बंधि छंडियां, सुरंग अंग कंचुकी सुभंत गात ताजरी, बनाई काम पंचबान ओट जोट लयधरी। प्रसंग: राजकुमार शशिव्रता के सुगंधित वस्त्रों, रंगीन चोली, क्षीणकटी और उन्नत स्तनों का वर्णन करते हुए कवि चंद्रबरदाई कह रहे हैं। व्याख्या: राजकुमारी शशिव्रता ने अनेक प्रकार की सुगंधियों से अपने सुंदर वस्त्रों को सुवासित कर रखा है। उसकी क्षीणकटी शेर की कमर के समान ही क्षीण या पतली है। उस पर वस्त्र बांध करके उसे नीचे की ओर लुढ़कती छोड़ रखा है। उसने शरीर पर सुंदर रंगों वाली चोली धारण कर रखी है। जरी की काम से मंडित व कंचुकी उसके शरीर की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रही है और स्वयं भी शोभित हो रही है। उस सुंदर कामदार कंचुकी की आड़ में छिपे दोनों उन्नत स्तन देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव ने अपने पांचों बाण वहां कंचुकी की आड़ में छिपा रखे हों, अर्थात उसकी कंचुकी में से ही दिखाई देने वाले उन्नत स्तन देखने वाले के मन में काम भावना को दीप्त कर देने वाले हैं। विशेष: पद्य में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट है। अंग सौष्ठव वर्णन यहाँ कुछ मांसल हो गया है। वर्णन शास्त्रीय किस्म के नक्षिक वर्णन जैसा प्रतीत होता है। सुरंग माल लाल बाल साबिलास छंडयम, सुपुभ पैरे जानी काम अग्नि संभ मंडयम, जु भारती सुगंग वय सुमेर श्रृंग ते बही। प्रसंग: स्नान और साज श्रृंगार के बाद राजकुमारी शशिव्रता ने अपने कंठ में एक सुंदर और मूल्यवान माला पहनी। उसकी शोभा और सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है। व्याख्या: राजकुमारी युवती शशिव्रता ने सुंदर कंचुकी आदि पहनने के ऊपर माला पहनी, जो अपनी अद्भुत सुंदरता से उसकी शोभा को और भी अधिक परिवर्धित कर रही थी। राजपुत्री शशिव्रता के उन्नत वक्षों पर पड़ी इस माला को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे पूर्व काल के वैर का स्मरण करके भयभीत होकर स्वयं कामदेव भगवान विष्णु के सम्मुख उपस्थित होकर उनकी शोभा बढ़ा रहा है। ध्यातव्य है कि कवि ने उन्नत स्तनों को कैलाश पर्वत निवासी शिव और सुंदर माला को कामदेव का स्वरूप प्रदान कर उपमित किया है। धन्यार्थ यह भी है कि उस माला के पहन लेने के बाद राजकुमार शशिव्रता का रूप यौवन और भी अधिक कामोत्तेजक हो गया था। शशिव्रता के कंठ में पड़ी माला को देखकर उसकी उपमा गंगा के प्रवाह से करते हुए कवि आगे फिर कहता है, वह देखकर ऐसा लगता था कि मानो गंगा की उज्ज्वल पावन धारा शिव के निवास स्थान सुमेरी पर्वत से नीचे की ओर प्रवाहित होती उतर रही हो। कवि ने यहाँ स्तनों की उन्नतता को सुमेरी पर्वत और माला को गंगा की धारा के रूप में चित्रित किया है। परिभाषा वर्णन में मनोहारता आ गई है। विशेष: समूचा वर्णन कामोत्तेजक है। वर्णन में मांसलता भी स्पष्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, सानुप्रासिकता भी स्पष्ट है। नाराज छंद है, छंद पूरा प्रतीत नहीं होता क्योंकि इसके आसपास के इसी छंद वाले अन्य पद्यों में चार चार पंक्तियां हैं जबकि इसमें केवल तीन। सुमंद गोप चिन्ह मंड पीत रत्त जावकम, अभूखन धरता चित्त मित्त हित शावकम, बनाय के चंडोल लाल जिड्ढता सुसुंदरी, सुदोषिता सुरंग थान अस्तुतास उच्चरी। प्रसंग: सब प्रकार के श्रृंगार प्रसाधनों से सज धज कर लाल पटों वाली पालकी पर सवार होकर राजकुमार शशिव्रता संकेतित मिलन स्थान हर सिद्धि की ओर चल दी। इस प्रसंग का भावाविल वर्णन करते हुए कवि चंद्रबरदाई कह रहे हैं। व्याख्या: अपने तन पर मंडित समस्त भूषणाभूषणों को गुप्त ढंग से अर्थात भीतरी तौर पर सुगंधि से सुवासित करने के बाद राजकुमार शशिव्रता ने पीले और लाल वर्ण की महावर या मेहंदी से अपने हाथ पैरों को सुमंडित किया। आभूषणों को धारण करते समय उसने प्रियतम पृथ्वीराज के प्रेम रूपी मृग शावक को भी अपने हृदय में धारण करके बसा लिया, अर्थात प्रियतम के प्रेम के वशीभूत उसका हृदय मृग शावक के समान मनचले या चंचल होने लगा। इसके बाद पालकी को लाल पटों से सजाकर राजकुमार शशिव्रता उसमें सवार हो गई। कौमार्ग में ही काम वासना की पीड़ा से सदोषित राजकुमारी शशिव्रता इस प्रकार संकेतित मिलन स्थल हरसिद्धि की ओर चल पड़े। तब वहां उपस्थित लोगों ने उसका और उसकी सफलता के लिए स्तुति गान किया। विशेष मित्तहित शावकम पद्म रूपक अलंकार की बड़ी सफल समर्थ योजना कही जा सकती है। अनुप्रास अलंकार की शोभा भी दर्शनीय है। सुदोषिता शब्द का प्रयोग साभिप्राय किया गया है कि परंपरा के अनुसार कुमारी या कुवारी कथा में कामोदय उचित नहीं, पर यहाँ शशिव्रता कुवारी होने पर भी काम भावना से पीड़ित दिखाई गई है, अतः वह सदोषिता है। कवित्त सहस सत्त कप्परी भीख किनो तीन बार कपट कंद कांवरी धसीय देवी दरबार सर्व शस्त्र आरंभ हस्त आरंभ सुरिसल धसीय भीर सम्मोह चूह पाई समंडिकल दल प्रबल धक्यनो मथन कज भुज सुकिन्न चहुमान की शरवृत्त बाल रंभा समा मिली गट्टि बंधन सुही। प्रसंग चौहान नरेश पृथ्वीराज उसके वीर सामंतों ने कपट वेश में हर सिद्धि में प्रवेश करके वीरता के हाथ दिखाए एवं शशिव्रता को प्राप्त किया, इस सब का वर्णन करते हुए कवि कहता है। व्याख्या चौहान नरेश पृथ्वीराज के 7,000 वीर सामंत और सैनिक कपालियों अर्थात सन्यासियों का वेश बनाकर कंधों पर कपट कांवरिया लेकर देवी के मंदिर के भीतर तक प्रविष्ट हो गए। भीतर घुसते ही क्रोधावेश में शस्त्र चढ़ाकर उन्होंने अपनी वीरता के हाथ दिखाने आरंभ कर दिए। पृथ्वीराज के वीरों का वह समूह भीड़ में धस कर भीतर पहुंच गया और उसने पृथ्वीराज के चारों ओर बड़ा ही कलात्मक घेरा डाल दिया, अर्थात पृथ्वीराज को घेर कर उनकी पूर्ण सुरक्षा की स्थिति में खड़े हो गए। इसे देख कर लगता था कि विपक्ष के विशाल सेना रूपी समुद्र को मथने के लिए पृथ्वीराज ने अपने को घेर कर खड़े सैनिकों के रूप में भगवान कृष्ण के समान विराट रूप धारण कर लिया। इसी विराट भुजबल के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज अप्सरा रंभा जैसी सुंदरी शशिव्रता को पा सकने में समर्थ हो सके। जैसे ही पृथ्वीराज और राजकुमार शशिव्रता आमने सामने आए, उनके हृदयों का गठबंधन तत्काल स्वतः ही संपन्न हो गया। विशेष पद्म रूपक और उपमा अलंकार की सुंदर योजना की गई है। वीर सैनिकों के बीच गिर पृथ्वीराज की उपमा विराट रूपधारी श्री कृष्ण से की गई है कि जो सामूहिक शक्ति को विशालता के संदर्भ में उचित ही है। हस्तारंभ हस्त दिखाना मुहावरे का प्रयोग भी उचित ढंग से किया गया है। उसी प्रकार उदधि जीव मथन का मुहावरे के रूप में भी सार्थक प्रयोग किया जा सकता है। समुची क्रिया वस्तुतः कूटनीति और कूट प्रबंध से ही संपन्न हो सकी है, अतः पृथ्वीराज को सफल कूटनीतिज्ञ एवं कूट प्रबंधक भी कहा जा सकता है। दिठ दिठ लग्ग समूह उत्कंठ सुभक्कीय निखिल लज्जानिव जयन मयन माया रस पग्गीय छल बल कल चहुमान बाल कुवरप्लन भंजे दोष त्रीख मिट्टयो उभय भारी मपरंजे चौहान हत्थ बाला गही सो उपम कविचंद मानो की लता कंचन लहरी मत्त वीर गजराज गही। मंदिर के भीतर पृथ्वीराज और शशिव्रता ने एक दूसरे को देखा, प्रेम दर्शाया और फिर पृथ्वीराज ने शशिव्रता का हाथ पकड़ लिया। इन सब का वर्णन करते हुए कवि चंद्रबरदाई कह रहे हैं। व्याख्या जैसे पृथ्वीराज और शशिव्रता आमने सामने आए, दोनों की नजरें मिल गई, उसी क्षण शशिव्रता की उत्सुकता और प्रतीक्षा ने से भरी घड़ियां समाप्त हो गई। क्षण भर में ही पृथ्वीराज को अपने सामने बिल्कुल करीब खड़ा निहार सुंदर शशिव्रता के नयन लज्जानवत हो गए। उस क्षण दोनों के तन मन काम माया में निमग्न हो गए, अर्थात काम भावना ने दोनों को प्रतीत कर दिया था। तब अपने कूट कौशल और कलात्मक व्यक्तित्व कृतित्व द्वारा चौहान नरेश पृथ्वीराज ने आज तक की कुमारी शशिव्रता को अपना कर उसका कौमार भंग कर दिया। इस प्रकार कुमारेपन में काम भावना के जिस दोष से शशिव्रता दूषित थी, अब सुहागिन बन जाने से वह दोष दूर हो गया। उस काल दोनों के तन मन अत्यधिक प्रेम रंग में रंग गए थे। उसके बाद जैसे पृथ्वीराज ने आगे बढ़कर शशिव्रता का हाथ पकड़ा, कविचंद उसकी उपमा देते हुए कहते हैं, उस क्षण लगा कि मानो एक बलवान एवं मदमस्त हासी ने अपने दृढ़ सुंदर दंड में लहराती सुनहरी लता को पकड़ लिया हो। विशेष अंतिम पंक्तियों में परंपरागत उपमानोपमेय से संयत उत्प्रेक्षा अलंकार है। वर्णन में इतनी कुशलता है कि पाठक बड़ा सजग होकर इस सबको पढ़ता सुनता है। चित्रमयता और दृश्य विधान की सजीवता भी दर्शनीय है। दिट्ठ लग्गी समूह अर्थात नजर से नजर मिलाना, इस मुहावरे का सटीक सचित्र प्रयोग किया गया है। भाषा में सानु प्रासंगिकता और रसानुकूलता भी उल्लेख्य है। चंदायना कहत बाल पिय पानी सु गुरु जन संभरे लोचन मोचि सुरंग सु अंशु बहे धरे अपमंगल जिय जाने सु नेन मुख बही मनु खंजन मुख मुक्ति भरक्कत नौ खही। प्रसंग प्रिय मिलन में अत्यधिक हर्ष सचिवता के नयन प्रेमाश्रु बहाने लगे। उन बहुत ही आंसुओं का आलंकारिक एवं प्रभावी वर्णन करते हुए कवि चंद्रबरदाई कह रहे हैं। व्याख्या जैसे ही महाराज पृथ्वीराज ने राजकुमारी सचिव्रता का हाथ पकड़ लिया अर्थात उसे पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया, उसके परिवारजन संभल गए अर्थात भावी परिस्थिति का सामना करने के लिए एकदम प्रस्तुत हो गए। पर हर्षाधिक एवं इच्छापूर्ति की विभोरता के कारण सचिव्रता के नयनों से काजल का रंग बहाकर छुड़ाते हुए आंसू अनवरत बहने लगे। सचिव्रता का अपना शुभ भाव भी जैसे उसके प्रेमाश्रुओं के रूप में अनवरत बहकर सामने आ रहा था अर्थात हर्षातिरेक के कारण रोकने की चेष्टा करने पर भी उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। वे आंखों से निकलकर उसके मुख पर बहकर जैसे उसे घेर रहे थे। उन मुख पर बहते आंसुओं को देखकर ऐसा लगता था जैसे सुंदर आंखों वाला खंजन नामक पक्षी अनवरत मोती उगल कर बहाए जा रहा हो अर्थात उस क्षण सचिव्रता के नेत्र खंजन नामक पक्षी के नेत्रों के समान सुंदर एवं आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। विशेष अंतिम पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर सार्थक योजना हुई है। सानुप्रासिक भाषा योजना भी द्रष्टव्य है। हर्षातिरेक में अनवरत प्रवाहित होकर आंसू हार्दिकता या मानसिकता को ही व्यंजित किया करता है। कवित्त गई शशिवृत्त नरेन्द्र सुड़ी लंघत ढई थोरी कामलता कल्हरी पेम मारुत झकझोरी बरलीन करी साहि चंप्यूर पुट्ठी लगाए मन सुरंग सई बत्त कंत लगी कान सुनऊ नृप भयो रुद्ध करुणा संत्रिम वीर भोग वर सुरभगति सगपन सुहास विभच्छ ऋण भय भयान कमधज्ज दुति। प्रसंग जब महाराज पृथ्वीराज ने शशिव्रता को ग्रहण कर उसे अपनी पीठ से सटाकर उठा लिया तब वहाँ उपस्थित अपने परायों में जो रसात्मक प्रतिक्रियाएं हुई उनका सजीव सटीक वर्णन करते हुए कविचंद कह रहे हैं। व्याख्या सीढ़ियां पार करते हुए चौहान नरेश पृथ्वीराज ने जैसे ही राजकुमारी सचिव्रता का हाथ ग्रहण किया वह लज्जावश तनिक पीछे हट गई या पीछे की ओर झुक गई, पर पृथ्वीराज ने आगे बढ़कर उसे इस भांति से पकड़ लिया जैसे कोमलतम काम रूपी सचिव्रता को झकझोर कर अपनी बाहों में भर लिया। इस प्रकार हाथों से पकड़कर वर पृथ्वीराज ने पहले तो अपनी वधु सचिव्रता को हृदय से लगाया फिर अपने पीर के साथ उसे लगाकर घोड़े पर सवार कर लिया। तब प्रियतम सचिव्रता के मन में जो मधुर भावनामयी या प्रेममयी बात उमड़ी रही थी वह उसने प्रियतम के कान से मुंह लगाकर कह दी। उसे सुनकर महाराज पृथ्वीराज ने तो रौद्र रूप धारण कर लिया अर्थात उनमें रौद्र रस अभिव्यंजित होने लगा और सचिव्रता में करुण रस साकार हो गया। सामंत कटवीर रस से अंचित होने लगे राजकुमार सचिव्रता के सगे संबंधी हास्य रस से भर उठे। युद्धभूमि में विभत्स रस साकार हो उठा जबकि कामधज वीरचंद साक्षात भयानक रस बन गया। विशेष आरंभिक पंक्तियों में उपमा अलंकार की योजना सुघड़ रूप में बन पड़ी है। एक ही स्थान पर विभिन्न रसों का उभार बड़े सजीव और सार्थक रूप में वर्णित किया गया है। रसों की स्थिति जिन भिन्न पात्रों में एक ही आलंबन या आश्रय को लेकर दिखाई गई है वह रस योजना के संबंध में कवि ने अद्भुत कौशल को व्यक्त करने वाली है। सबर वीर कमधज्ज अर्ध अपय पग मग्न इख अच्छुत उच्छर ही जानि परिमानन मग्ग सारधार पुंखियो वीर मंगल उच्चारय सबय साथ बंदिय ही सकल पुंजा संभारय पर मुख्य बरन बरनी सुपर इह अपुप पिख्यो नयन उपनो वीर सिंगार संग रुद्र वीर चौरी नयन। प्रसंग सचिव्रता का पृथ्वीराज द्वारा अपहरण कर लेने के बाद वीरचंद ने उसे वधु बनाने की इच्छा तो त्याग दी पर क्रोधवेश में अपमान का बदला लेने के लिए वह सेना को हरकत में लाकर युद्ध कार्य में प्रवृत्त हो गया। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं। व्याख्या पृथ्वीराज को शशिव्रता का अपहरण करके ले जाते देख कर क्रोधावेश में कम भर कर कमधज वीरचंद अपने सुतीक्ष्ण खड्ग के द्वारा अर्घ्य अर्पित करने लगा अर्थात भयावह युद्ध में प्रवृत्त हो गया। उछल उछल कर बाण बरसने लगे और उनके लगने से वहां रक्त वर्षा भी आरंभ हो गई। परिणामतः भयाक्रांत होकर पक्षीगण चहचहाया शोर मचाकर उड़ने लगे। उन उड़ते पक्षियों का सर भी मानो वीर योद्धाओं का स्तुति गान बनकर गूंज रहा था। युद्ध के रूप में वीरचंद के समस्त हाथी में जैसे अर्घ्यार्पण में अपनी वंदना का स्वर भरने लगे। इस प्रकार युद्ध ही जैसे उस क्षण पूजा हो गया। अब वर के रूप में आए कमधज वीरचंद ने दुल्हन के रूप में शशिव्रता का वरण करने की इच्छा त्याग दी और अपनी वीरता का प्रदर्शन करने लगा। क्योंकि वीरचंद दूल्हे के रूप में सज धज कर आया था, अतः कवि कहता है कि उसकी साज सज्जा तो श्रृंगार रस की कांति उपजा रही थी, पर अब उसके अंग अंग से रौद्र रस संयत वीर रस आभासित हो रहा था। उस क्षण मानो रणभूमि भी विवाह मंडप बन गई थी। विशेष पद में रूपात्मक योजना स्पष्ट है, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा की योजना भी स्पष्ट है। कवि ने श्रृंगार वीर और रौद्र रसों का एक स्थान पर समन्वित प्रदर्शन वर्णन बड़ी ही कलात्मक कुशलता से किया है।